तेल प्रथम अवस्था में, कब प्रथम अवस्था में साधन करते करते अशक्ति के बाद में
भव अवस्था होने पर प्रथम अवस्था में
कोई प्रेम
भाव कर रहा है क्या, तो है तो प्रेम भी है भाव। जैसे आम है पहली स्थिति में क्या कहा जाता है, कच्चा, और जो बीज का होगा दशा इधर भी होता है, बंगाल में दशा कहते हैं, पीला हो जाएगा रहेगा कड़ा किंतु पीला हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा गंध, थोड़ा सा गंध, थोड़ा नरम नहीं होगा, उसमें रस नहीं होगा, न मीठा रहेगा न कड़ा रहेगा, वो बहुत ही लोग खाते हैं वो खटमिठवा, खट्टा और मीठा दोनों। और इसके बाद जब पक जाएगा ऊपर नीचे सब समय वो सब जगह एकदम रसभरित हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रेम की पहली स्थिति का नाम भाव है, यही दिव्य मंगल में देखा जाता है। महाप्रभु के परिसरों में इसका वर्णन नहीं किया इसलिए कि वो लोग सिद्ध हो, रूप गोस्वामी को भावावस्था कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए उसको करके भरत जी का और बिंदु मंगल और भागवत का वर्णन किया गया है। वो जैसे मैं जो उनका ये वर्णन आता है जिस लोगों को भावावस्था कुछ हर परिस्थिति को भी भावावस्था से ही जीते जी। प्रथम अवस्था में उसको भाव कहते हैं सात्विक, उस समय में सात्विक भाव जो होते हैं, सात्विक भाव में आठ जो भाव रहते हैं,
सत्य से उत्पन्न जो भाव कैसे
सत्य माने क्या है, वही जो पहले बता रहा है कृष्ण और प्रभावी वो होना चाहिए, उस सत्य से प्रकटित होकर के और शरीर पर जो दिखाई पड़ते हैं, किंतु इसका मूल उद्गम है वहां शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व की स्थिति में कृष्ण को देखा और देखकर के कृष्ण अप्रकट हो गए तो ये रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी, तो इसका मतलब है जो उस समय में कुछ देख करके कृष्ण का ध्यान हो गया, इसलिए शरीर में स्तंभ हो गया, रोमांच हो गया, कंप, अश्रु, पुलक, वैधर्म्य, आप ये था स्वल्प मात्रा थोड़े अंश में ये होते हैं, थोड़े थोड़े शिव कम पास्तु प्रभाव है, जब थोड़े थोड़े स्थिति में होते हैं अल्प अल्प परिमाण तो उसको कहते हैं, और यही जब पूर्ण अवस्था में जब देखे जाए हैं तो समझो कि यही उसका लक्षण क्या है,
जिसको भाव उत्पन्न हुआ है उसका लक्षण।
अब भाव में भी नहीं होगा जब तक ये स्थायी भाव न, भाव पहले स्थिति में जो होगा वो एक साधारण भाव के रूप में होगा, चित्त द्रवित नहीं होगा, किंतु जब वह स्थायी भाव में जब पहुंचेगा अब उसका भाव कभी भी बदलेगा नहीं, और उस पर और स्वभाव संचारी व्यभिचारी भाव अनुभाव तक एक जगह मिलेंगे, तो उस समय में तब प्रेम उचित है, प्रेम अच्छी तरह से प्रकाश उसके पहले, इसलिए स्थायी भाव हो गया है या भाव उत्पन्न हो गया तो उसके लक्षण क्या है, बाहरी वो भी बाहरी स्थायी भाव का लक्षण, शांति व्यक्त का लक्षण विरक्तिर्मान शून्यता आशा बनता संकुदंता नाम जानी सदानती आसक्ति सदग्न ख्याने ऋतु तत्वसति स्थले इत्यादि अनुभावा सुजाते भावं पूरे जने हम पूरे जने, जिसके अंदर में भाव उत्पन्न हो गया कहीं कहीं स्वभाव पिछल रहने पर शिथिल मैंने क्या, जैसे बहुत से पुरुषों में भी स्त्रियों में भी देखा जाता है कि बात के बाद में किसी ने कहा दिया किसी बात का स्मरण करके हाय लड़की मेरी चली गई, वो कैसे भेजी। हम लोगों ने भी कभी कभी ऐसी पिछलता देखी, ऐसी पिछलता की वजह से भी ये सब चीजें हो सकती है, पत्र इत्यादि हो सकती है। इसलिए यहां पर दस हैं ना, कितने
नौ।
ये सब तो भाई ये सब भाव जब भी हो तो सब जैसे ये प्रश्न नहीं है तो स्वभाव वैसा आदत के द्वारा अभ्यास करके भी कोई रोक नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे कर उठते हैं चमक जाते हैं, कभी आंख से मुंह से आंसू और लाला भी टूटने लगते हैं। ऐसा मैंने हरिदास ठाकुर कहीं जा रहे थे, देखा एक सांप हो गए वो बजाता है और सांप को खिला रहा है और कृष्ण की काली गमन की लीला का वर्णन था। हरिदास ठाकुर वहां पर पहुंचे और काली गलन की लीला सुनी और भावाविष्ट हो गए और वहीं पर उसने उनकी बहुत पूजा की। लोगों ने देखा जैसे ये नसीब की पूजा कर रहा है, सब लोग बड़े प्रभावित थे। इसके बाद में जब उनको होश आया तो वहां को चले। एक ब्राह्मण देख रहा था जिसे मुसलमान होकर के छोकरा होकर के अभी छोटी सुंदर और सभी लोग इतना आदर किया, चरणों की धूली सभी लोग लेने लग गए मुसलमान। तो मैं जब भी ऐसा भाव दिख रहा हूं तो कपटता के साथ लोग आदर करेंगे और हमको सिद्ध समझ लेंगे। ऐसा समझ करके वो भी पैसे ऐसा कपा कपा करके जिन पर भी पड़ा। तो ये ने कहा अच्छा जरा परीक्षा तो करूं, बस अपनी चाबुक उठाई और एक चाबुक मारो लगते ही यहां से सपाट लगा और सब उसके फट गए। और ये खदेड़ा मार दी वो भागते जाए कहे देखो ये भाव ऐसा भाव नहीं। 22 बाजारों में उनको हरिदास ठाकुर को मारा, कोई पता नहीं है जिसे कौन मार रहा है कि क्या हो रहा है। शरीर में आवेश ही उनका नहीं, भगवान में आवेश हो गया। शांति व्यक्त काल शून्यता आशा बंद इसके विषय में हम लोग सब आलोचना करेंगे। आज कीर्तन भी है, सब लोग कीर्तन में साधु संघ और अमृत की मूर्ति इसके बाद में पूर्वान्न और आ गया यहाँ पर नीच का, इसके बाद में रूप मध्यान्ह में आ गया रुचि, इसके बाद में आसक्ति, अब यहाँ पर संध्याकालीन हो गया भाव, भाव के बाद में फिर आएगा प्रदोष, और प्रदोष के बाद में नक्त ही नापक्ष समाप्ति, इन्हें पर भाव, भाव में अनुभव ऐसे दूर हो जाते हैं, किंतु उसका कुछ कुछ गंभीर हो सकता है। जैसे भरत जी के चरित्र में भरत जी के चरित्र में और विलोमगल जी के चरित्र में और अर्थान भाव के चरित्र में ऐसा देखा महाराज अंबरीश महाराज के चरित्र में भी ग्रंथ में अंबरीश में यह देखा जाता है कि गली भक्ति करते 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 कैसे अनर्थ उनका दूर होता गया और कृष्ण की पूर्ति के लिए सब कुछ करते थे, राज्यपाल इत्यादि सब मंत्रियों के हाथ में, जबकि इत्यादि सब कार्य लोगों के हाथों में, सब प्रकार से निश्चिंत होकर के भगवान मंदिर सेवा पूजा नौगा भक्ति के विश्व में आकर के धीरे धीरे भाव अवस्थान में आ गया। भक्ति को दिखलाया भक्ति आ गए, किंतु एक सात्विक वस्तु में, सात्विक वस्तु में थोड़ा सा अंधकार उनकी आसक्ति हो जाने से कुछ दिनों के लिए वो रुक गए, उनका जन्म हुआ किरण के रूप में और ब्राह्मण के वो जन्म उनका चला गया। फिर इसके बाद बिल मंगल जी का अनर्थ उससे दुकाते दुकाने और गली गलौर के बाद अपनी आंख तक तोड़नी, जो आंख प्रिय होती है ये भगवत भजन में आता है, तो तभी तो भगवान के ऊपर आया गीता पार्थिव वो गीता बन में आए और धीरे धीरे उनका भाव संपा हो सके लगभग प्रेम के रूप में चलना, एक दूसरे शरीर में बड़ी शुद्ध प्रेम और फिर आगे ऐसे ही अवस्था आने पर हमने बतलाया नये अंदर भक्ति नौकारी प्रेम की प्रथम अवस्था जिसमें कि सात्विक भाव समूह थोड़े थोड़े रूप में उदित हो जाए, अस्तु पंप कुल हरिभाव का लक्षण ये सतत ऊपर से ये दिखता है, भीतर को समझना मुश्किल है, भीतर से वही समझेंगे अंतर लक्षण, चित्त जो द्रवित होता है रुचि के द्वारा, रुचि कौन कृष्ण संबंधी जो रुचि है, रुचि इतनी प्रबल हो जाती है रुचि रुचि के द्वारा चित्त पर इसको कहते हैं ममता भी उसको भी बहुत आ जाती है, तो उस समय ये तो है अंतर लक्षण, किंतु अंतर लक्षण देखेगा प्रधान ढंग से देखने देखते हैं, देखने में नहीं आएगा, विशेष विशेष लोग उसको अनुभव कर सकते, इसलिए उसका तटस्थ लक्षण जो है ऊपर से जो भाव है उसको ये बतला रहे हैं शांति। चित्त संकल्प के जितने भी कारण हैं वो आने पर चित्त क्षुब्ध नहीं होगा, कितना भी हो जितना भी आए चित्त और भगवान की तरफ में देव नहीं होकर के चलता, अशांत नहीं होगा। तो इसका भाव हम लोगों का चित्त कभी गड़बड़ हो जाए, कभी कभी संकल्प हो जाता है कि भरी प्रकार समझ से ग्रंथ पाठन करते हो, इसलिए चित्त जब शुभ न हो तो ये समझो जो अनर्थ दूर हो गए हैं। अनर्थ माने क्या है? बहुत प्रकार के अनर्थ पहले करता है, स्वरूप धन असत कृष्ण हृदय क्रमशः होता है, पहले स्वरूप में धन यानी मैं कौन कृष्ण हूं, भक्ति का स्वरूप कैसा अनर्थों का ये विषय में भ्रम हो जाएगा और भक्ति को भक्ति जब समझेगा और अपने को ब्रह्म समझेगा कृष्ण को ब्रह्म समझेगा या कृष्ण को कुछ भी नहीं समझता और भक्ति भक्ति को अभक्ति समझने लग गया ये सब स्वरूप था। असत कृष्ण जब देह में आत्मभिमान होगा और चारों स्वरूप ज्ञान नहीं रहेंगे तो संसारिक वस्तुओं को भी ये हमारा प्राप्त है हमको भी सब कृष्णा होता है प्यास, प्यास माने विषयों की प्यास, विषयों की भूख। भगवान में रुचि नहीं जाने पर विषय में रुचि जरूर जाएगी, जितने परिमाण में भगवान में रुचि चलती जाएगी परमात्मा में रुचि होगी उतने ही परिमाण में ये रुचि कम होगी और जितनी संसारिक विषयों में रुचि होती जाएगी और जितना होगा हृदय दुर्बल होने लगेगा, हृदय दुर्बल होने से ही फिर समझ नहीं पाएगा इसलिए चित्त क्षुब्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त क्षुब्ध होना, यदि उस बच्चे को वो गिर गया है पानी में और भरत जी भजन कर रहे थे भजन में उनका चित्त होता तो उनको वो गिर लाएगी, बच्चा तो एक दिन एक दिन जाएगा ही मरेगा ही या कहीं ना कहीं जाएगा ही, उसमें इनका यह ज्ञान विलुप्त हो गया उसके दुख को देकर के द्रवित हो जाने से भगवान के प्रति चित्त जो उनका था जो भजन कर रहे थे नाम नामी अभिन्न या उनकी लीला कथा का जो चिंतन कर रहे थे वो अभिन्न न समझ करके संसार में यही दुर्बलता है, इसी का नाम है दुर्बलता। चित्त क्या और इसी के बाद में उनका अपराध नहीं हुआ किंतु किसी किसी का अपराध भी हो जाता है, अपराध होना वैष्णव का कम यदि अपराध हो गया तब तक न जाने कितने उनके जन्म चले जाए अपराध न हो, चित्त के उनका वो शांति नहीं गई चित्त चंचल हो गया है और क्या करें उन्होंने विचार किया किंतु चित्त दुर्बल होने के कारण उसको उठा लेते भी कोई बात नहीं थी छोड़ देते थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अपना गर्जन परिपाटी में लो किंतु छोड़ा नहीं, वो आसक्ति क्रमश बढ़ती है और कोई था नहीं नारद इत्यादि आकर के बीच में उनको भगवान थे किंतु नहीं हो वैसा मानेगा नहीं इसे छोड़ भगवान है चित्त में क्यों नहीं रोक दिया स्वपर्व फल वो पीछे सीखेगा कैसे ठोकर लगे इसलिए
उनको भगवान ने नहीं मिले, वहां उनके हृदय में तो थे ना शिक्षा दी ताजी अच्छा तो कुछ कर ले पहले ताज मत करो उधर ढूंढ ले जाओ देखो सीखो। धीरे धीरे आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वो छोड़ न सके, अंत में उसी के लिए प्राण दे करके और भक्तिवृंद बन करके चिंता कर। इसलिए सात्विक चिंतन में इतना है अर्थांतिक, तो राजसिक और तामसिक यदि हो तो कमैजनिक क्या स्थिति। दिव्य मंगल जी संभल गए, कैसे संभल गए देखा गया, अच्छा ये बाधा दे रही है दूसरे प्रभु ने कहा जा ये ठीक, और फिर उसको चित्त में बार में सर्वत्र उसको दर्शन दे दिया। अभ्यर्थ कालोत्तम सब समय अभ्यर्थ कालोत्तम सब समय चित्त को लगाए रखना बहुत भक्ति में, जैसे प्रसाद सेवा के समय में नीम कयाला से लेकर लाफड़ा पहले अन्न के साथ में या रोटी के साथ में नीम कयाला दे दिया, इसके बाद में लाफड़ा दे दिया, इसके बाद में दाल दे दिया, इसके बाद में रसा दे दिया, इसके बाद में डालना आया इसका खेने का आलू के साथ में बहुत सुंदर बना हुआ है उसके साथ में, फिर इसके बाद में चटनी दे दी, इसके बाद में दही दे दिया, दूरा दे दिया, इसके बाद में परमानंद दिया, इसके बाद में सुंदर और सुगंध दे दी, पापड़ दिया इसलिए कि वो बीच बीच में लेकर के वो परमानंद या रसगुल्ले खाए, इसलिए पापड़ दे दिया। विभिन्न प्रकार के रुचि को परिवर्तन करने के लिए निर्विशेष ज्ञान में कोई चीज एक ही चीज है, उसमें दो चीज है नहीं, किंतु भक्ति में तरह तरह की चीजें तरह तरह की, सदैव अर्चन करो आरती करो आरती में कीर्तन करो, थोड़ी देर के बाद में उनका माला ताला उतार करके सब ठीक रखो, तुलसी चयन करो फूल चयन करो, थोड़ा सा गुना हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति सुंदर है वही तो तुलसी मिलेगा पुष्प तो मिलेगा, थोड़ा सा घूमना घामना भी हो गया और एक हाथ में दलिया हो क्या करते हैं
साजी,
एक हाथ में दो चीज जैसी और एक हाथ से तू हरे कृष्ण 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 कर, कोई वैष्णव आ गया तो दो चार बातें तुमसे कर ले भाई भजन आज दुआ नहीं, वो कहता है जी आपका भजन आज मेरा ही भजन है, बस ऐसे रंग का हम थोड़ा सा कर दिया फिर बिना आया स्नान किया, स्नान करने के बाद में पश्चिम इत्यादि किया, इसके बाद रसोई बनाया, देखो रसोई बनाना रसोई बनाया, इसके बाद में आकर के अर्चन किया फिर जो भोगराग दिया, इसके बाद में थोड़ा सा दोपहर में ग्रंथ लेकर के चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवत इत्यादि लेकर के बैठ गए, इसी तरह से फिर शाम को ठाकुर जी को जगाया कुछ पाठ कीर्तन सुना, फिर रात में हरिकथा कुछ हुई कुछ अपना हरिनाम की माला लेकर के बैठ गए, तपते तपते जाते प्रसाद जब तक नहीं माता सवेरे में उठ करके ये चिंता कल हरिनाम पूरा नहीं हमारा हुआ, ऐसा उठेंगे सवेरे कल जो हमने कुछ हमारे हृदय में दुर्बलता थी उसको याद करते थे, ये सब दुर्बलताएं भजन हो नहीं रहा कैसे करें, हृदय द्रवित होकर के प्रभु को पुकारते हैं दर्शन को पुकारते, इस तरह से नाना प्रकार की ये मन उचते एक से तो एक में एक में हरिनाम करने में थोड़ा चयन हो गया, हरिनाम की महिमा जिस शास्त्र में उसमें पढ़ने में महाप्रभु का चरित्र कुछ पढ़ने लगे, रघुनाथ दास का चरित्र कैसा, रूप गोस्वामी का चरित्र कैसा, कैसे उन्होंने भजन किया, महाप्रभु जी की कैसी, फिर उसे भी थोड़ा सा ये मन हो गया श्रीमद् भागवत में कृष्ण का कृष्ण की जो विदाएं हैं कुछ दुख समझा दिया, फिर थोड़ा सा हरिनाम किया, फिर थोड़ी सी कोई सेवा का भी करना है मंदिर के सामने में कुछ पड़ा उसको खरीदा, इस तरह से सारा दिन रात 24 घंटा में इस पर मन लगाया जा सकता है, इसको कहते हैं अवस्था। व्यस्तकाल तो उसमें क्या है, हरिनाम की बोली लेकर के दूसरी चिंता का, कोई भगवान का जो कोई सेवा हुई उसमें दूसरी चिंता नहीं, ये व्यर्थ काल थी, इसे व्यर्थ न गाओ, जिनका ऐसा हो गया है उनका 2400 घंटा अब व्यर्थ होता है, किसी न किसी तरह में उनसे चित्त लगा रखा है भगवान, मन और कुछ सोच नहीं सकता, मन सोचता है अनर्थ होता है, इसलिए मन को कोई सोचने समझने का मौका न देकर के भगवान की कथाओं में निरंतर लगाया रहता, अपने को भी लगाया दूसरों को, तब ये समझो जैसा जिसका हो रहा है। भागवत में पहले ही कहा गया भगवान की कथाओं को सुनने से मैं जिसकी रुचि नहीं है उसका सब व्यर्थ, सब यदि भगवान की कथाओं को सुनने में संकरण में भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में भक्ति में यदि लग जाए तो उसका चित्त जरूर प्रसन्न होगा, चित्त में खेद नहीं है। अच्छा, चित्त में खेद होता है इसका दायित्व कौन है, कौन है, कौन है, विचार करो ठीक से, चित्त मेरा खेद खेद भगवान दाई है कि गुरु दाई है, ना वैष्णव दाई है, ना वो व्यक्ति है, ना कि कौन, इसी को बहुत तरह से शास्त्रों में समझाया, उसके लिए कोई दूसरा दाई नहीं है, अनर्थ हमने है इसके लिए कौन दाई, अनर्थ गुरु को गया वैष्णव के प्रकाश है, इसलिए कि कृपा सप्त नाम गुरु को भी चाहिए और चित्त को सप्त में भगवान की भक्ति में लगाए, इसलिए 64 प्रकार की भक्ति है, अरे और कुछ नहीं है तो गैया तो है, गैया के चरण में पानी डाल करके उसको समय पर भूको, उसका दूध ठाकुर जी को दो, गैया को भगवान की एक समझो, यदि तुलसी का दूध से नहीं है तो पीपल सबको छाया दान देता है तो नहीं तरह से पानी डाल, यदि किसी काम में नहीं मन लगता, हरिनाम में भी मन नहीं लगता, भगवान की कथा में भी मन नहीं लगता तो तुलसी में स्वास्थ्य का पानी देकर तुलसी की परिक्रमा करो, मंदिर की परिक्रमा करो और उस समय और कुछ नहीं करने महामंदिर करें, नहीं यहां मन लगता है चाहते तो कोई भगवान में जाए, नहीं यहां पर मैं अच्छा तो जमुना जी को जाकर के स्तुति करके प्रणाम करके स्वास्थ्य स्नान करते, मैंने किसी प्रकार से मन को बैठने लगा, कोई दूसरी कृष्ण की चिंता के अतिरिक्त दूसरी चिंता, यहां कभी शरीर में यदि कोई क्लेश है तो भी इतना हरिनाम इत्यादि करो जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने पूछा आज आपने प्रसाद का उल्लंघन क्यों, महाप्रसाद आज आपने पाया नहीं, हमसे जाकर के वो बोले हैं तुम आज हरिनाम पूरा नहीं हुआ यही रोग है, और उसने हरिनाम करने की चेष्टा किंतु हाथ नहीं उठता, जंगल नहीं उठ रहे तभी तो चेष्टा करें प्रभु आप कृपा करके नाम पुकार, हम का तो इतना नहीं होगा किंतु जहां तक हो चेष्टा करना, 2400 घंटा मन को जैन के उपायण कृष्ण मनु निवेश, इसलिए ये सब पूछ चुके और ऐसा नहीं करते दिन रात उसी की चिंता करेंगे तो अनर्थ बढ़ जाए, इसलिए अनर्थ से दूर करने की चेष्टा करो, अव्यर्थ काल में न करो, हरिनाम करने के समय, हरिकथा करने के समय, भागवत पठन पाठन के समय में, साधु की आरती करना, कभी भी किसी समय मन को किसी दूसरे विषय में जाने मत दो, इसका नाम है हम लोग चेष्टा करके करें, करेंगे, और भाव भक्त क्या करेगा, उसको चिंता नहीं करने सब भाव ग्राहक से उसको। ऐसे भाव भक्तों के संग में रहने से उसको बहुत सहयोग मिलेगा, अनुकूल होगा उनका अव्यस्त काल। विरक्ति मान शून्यता, बहुत से लोग मिलने पर अधिकांश अपने सुख दुख की बातें करते हैं, वो सब सुख दुख की बातें अत्यंत कनिष्ठ अधिकारी है ऊपर पर सकता, हम लोगों को उसमें अधिक पीड़ा होना है, शरीर में होगा नहीं, दिन रात उसी की चिंता में मरेंगे। कोई अपमान कर दिया तो अपमान कर देता है तो उसका धर्म वो करेगा, उसका फल वो करेगा। कोई हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा ना, उसको किसको भोगना पड़ेगा, निंदा जो करता है वो ना उसको भोगना पड़ेगा हमको तो भोग। किंतु यदि हमने सोचा कि वो हमारा अपमान कर रहा है तो हम फिर भोग रहे हैं अपने को, वो तो जो भोगेगा भोगेगा हम भी भोग लेंगे। इसलिए इनों को अनित्य जान करके इससे हमारा कोई नहीं संबंध नहीं है, कोई अपमान भी किया न किया हमको समय नहीं है, फुर्सत नहीं है उन सब चिंता करने की। ऐसा भाव रख करके निरंतर चित्त को उधर में रखना, हम लोग का कभी कभी हो जाता क्योंकि अभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु हम लोगों को तैयार रहना चाहिए ये भाव उत्पन्न होगा इन सबको। इसे जहां तक हो सो धीरे धीरे इन सब विरोधी भावनाओं को दूर करना, साधक में ये स्वाभाविक रूप से विरक्ति, विरक्ति मैंने क्या है, भगवत भगवान को छोड़ करके, भगवत संबंधी वस्तुओं को छोड़ करके जितने भी विषय हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं उनके प्रति पहुंचे, सब समय भगवत में चिंतित होने से उसको इधर में कोई रुचि ही नहीं होती है। इसलिए इसको कहा गया विरक्त। जब भगवान में विशेष रूप से अनुरक्ति होगी चिंतन में दिन रात उसी की मधुर लीला का खानों की और सब चीजें, भाव माने क्या बताया ना, जब रुचि के द्वारा कृष्ण संबंधी रुचि के द्वारा चित्त जब द्रवित तो प्रवित कम होगा, जबकि एकदम वो सब चीजें आए उसको अब समय कहा है। इसलिए जब इसमें रुचि लग गई अब वो विरक्ति संसार से हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है सब विषयों से घृणा करेगा, घृणा नहीं, स्वाभाविक रूप में अनुकूल वस्तुओं के प्रति रुचि करता है और जो प्रतिकूल चीजें हैं उनके प्रति अपने आप घर में जाएगा, इसका नाम है विरक्ति। विरक्ति भाव भी हो सकता है, मन की क्रिया भी हो सकती है, आंगिक क्रिया भी हो सकती है इंद्रियों के द्वारा। इसलिए इन सबसे वो जो महापुरुष होते हैं भाव आए इनको घर में फुर्सत नहीं है, इसलिए उनके प्रति विरक्ति हो जाए। मान शून्यता, मान शून्यता, मान साधारण रूप में भजन का विरोधी है। जितने ही जो मान की लालसा करता है सभी लोग हमें आदर करें, निश्चित रूप से उनका उनसे विरोध होता जाए, विरोध होने से हम भी जितना बढ़ेंगे ना विरोधी भी उतना बढ़ेगा। यदि नदी में कोई एक बांध बांध दिया साधारण तो पानी ऊपर तक पहुंचेगा और बढ़ा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और जितना तक करते 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 यहां तक ऐसा होगा जो नदी के ताजा लेवल है उसके बराबर बांध उसे ऊंचा कर दिया तो आस पास से इधर से निकल जाए। यदि और भी उसको बांधो तो कहां कहीं ना कहीं जहां से बांधता वहीं से निकलेगा, वो पानी वो उठा रहे वो तो आएगा ही। ऐसे ही मान सम्मान अंतर में नहीं होता है उनको स्वाभाविक रूप से। सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं उसका कोई कंकट फेंक रहा है कि ठेला मार रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है, उनको उनके कानों में जाता है उनके कान में ही नहीं प्रवेश करता। और भगवान जी तो उनका मान लेके कोई उन पर कोई अर्थ स्वस्थ हो तो उनको थोड़े लगेगा, वैसा कहीं होता नहीं, सब प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है उन लोगों को। तो ऐसे ही समस्त विषयों के प्रति जो भगवत संबंध है उसके प्रति अपने आप विरक्ति हो जाती है और मान शून्यता मान भी हो जाती है। क्या कोई मान दे रहा है कि नहीं, अपने अंदर में मान लेने की इच्छा नहीं, ये यदि पूर्ण हो जाए तो प्राय सभी कुछ हो जाए। अंततः सब कुछ संसार इत्यादि छोड़ने पर भी सब कुछ प्रतिग्रह इत्यादि ले उससे नहीं ले रहे हैं और नंगे भी डोल रहे हैं तो भी नंगा होने का मान लगता है। जो कहें इसको तो एकदम कपड़े की देखते ये तम नंगा, बहुत से लोग नंदा बाबा जी नादा बाबा जी हैं, हम लोग ऐसे श्री वन में बेल वन में तो देखा ऐसे ही घूमरा और गायों के लिए, अरे भाई आप लोग गायों की रक्षा के लिए ये कीजिए वो कीजिए, जो नहीं लेता है उसको गायों के मारने भी दौड़ता है। ये सब मान शून्यता, मान शून्यता उसी का होगा स्वाभाविक रूप में जिनके जिनमें भगवान के प्रति हम लोग को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मान शून्यता भगवत भजन में मान बहुत ही बड़ा भारी बाधक, जो कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ होता है जो कुछ कहने से आदमी, अब यदि हम खुल करके कह देना तो बहुत से आदमी शत्रु भी हो जाएंगे, इसलिए आदमी भगवान इसीलिए सामने नहीं जाते, गुरु भी नहीं कहते, प्रकरण का रूप से एक दर्शन उतरा करता, बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझ लेते हैं और अबुद्धिमान विरोधी बन करके धीरे धीरे अलग हो जाता है। मानव सुंदरता आशा अंध भगवान का भजन कर रहा है, प्रेम अभी नहीं हो रहा है, प्रेम के निकट पहुंच गए हैं तो आशा नहीं छोड़ता, कृष्ण जरूर मिलेंगे ही, सब समय ऐसी ऐसा आशा बनी जरूर मिलेंगे, कभी भी निराश नहीं होता। दो जन्म लग गए, चार जन्म लग गए, दस जन्म लग गए, निराश नहीं, मिलेंगे जरूर और दीर्घता के साथ में खड़ी। जैसे नारद जी को भगवान ने दर्शन दे करके फिर अंत ने कहा इस शरीर से तुमको दर्शन नहीं मिलेगा, रोना कल्पना सब छोड़ छाड़ करके जैसे भगवान ने आदेश दिया पृथ्वी में सबक प्रजा प्रचार कर करो, मान इत्यादि की लालसा छोड़ दो। लोग क्या कहते हैं ये पागल है कि कैसा है, कोई लज्जा नहीं है, तो लज्जा कर जा सब कुछ छोड़ करके संसार में वो वैसे ही कर दूंगे। बहुत दिन बीत गया आशा उन्होंने नहीं छोड़ी तो क्या हुआ, शुद्ध स्वरूप की उनकी प्राप्ति हुई। ऐसे ही हमारे नरोत्तम ठाकुर जी के गुरु
लोकनाथ
साधारण साधक के गुरु जी प्रसन्न नहीं हुए, हमको गुरु शिष्य के रूप में अंगीकार नहीं, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। दूसरा होता ना तो ऐसे ऐसे लाख गुरु मिलेंगे, चलो उस गुरु के, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, मर जाएंगे मिट जाएंगे तो भी नहीं छोड़े, ऐसी आशा जरूर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये कब तक हमको गुरु मिली शिष्य नहीं पाएंगे। जब ऐसी अवस्था ही पैखाना करती सब फेंक दी है, उन पर बिगड़े भी किंतु वो नहीं अपने पक्ष से तो उन पर करके उनको शिष्य रूप में शबरी के पास में कितने दिन भगवान नहीं आए, आशा छोड़ी इसी तरह से महाप्रभु के समय में एक महाप्रभु जी ने कहा तुम पर हम लाखों जन्मों तक पिता नहीं करेंगे, इस मुकुंद को परजे दिया, नहीं करेंगे। अब वो हम रहते ना तो कहते या लाक्ष्य हम नहीं चिंता करेंगे, अच्छा और अभी हम दिखाते क्या दिखा देगा, अच्छा तो आपको मालूम पीछे पड़ेगा दिखाएंगे नहीं, आशा नहीं छोड़, कभी कदाप आशा मत छोड़, या लाख जन्म में होगा बस, ना जब लाख जन्म के बाद होगा बस, आनंद से जब नाच ले लेगा माफ नहीं कर, अरे बुला लो और बस गले से लग करके बस साथ ही साथ बस प्रेम में अभी हो करते एक सेकंड में ऐसे ही आशा नहीं, इसको कहते हैं आशा बंध समुत्कंठा। कभी वैष्णव हो यदि उपेक्षा भी करें भाई तुम लोग मत घबराओ, उपेक्षा तुम्हारे कल्याण के लिए चाहिए। हम लोग कभी कभी गुरु की कभी उपेक्षा की, आशा मंद नहीं छोड़े, इस तरह से शास्त्र में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म लेंगे किंतु हम आशा जरूर मिलेंगे, समुत्कंठ मिलेंगे तो बस चुपचाप सोए रहे सोते रहे ऐसा नहीं, समुत्कंठ कब मिलेंगे कब मिलेंगे ऐसी भावना है, जब मिलेंगे ही तब तक फड़ाने की जरूरत है नहीं, आशा नहीं मिलेंगे जल्दी कब मिलेंगे ऐसी हृदय में तड़पण। समुत्कंठ का कोई उदाहरण है इस शास्त्र में, जो समकंठा ब्रा नहीं जाते ब्रह्म दासु स्वामी इत्यादि आशा हरे हम सिंध भाई कथन चित्तालोमया नगमिता केशम प्रथम ही संचेत कृपा मई विधास प्राण ब्रजेन बरूर आशा का समुद्र ला रहा है, क्या आशा का समुद्र है कैसे कृपा कर अपने चरण हमारे शिर पर देखें कैसी है ये बोलेंगे बिलास करके जब जरा पंखा लाना तो तभी रूप मंजरी बुलाएंगी, जिस पैर को मैं पलोट रही हूं तुम इसको ले लो कभी किसी रूप में, ऐसे आशा का सागर है, मैं उस आशा के सागर को पाने के लिए उत्कंठा के सही प्रतीक्षा कर आशा बंदेश आशा हरे अमृत सलीम हो भय कथन से कालो भयान भविता काल खब कहां चला गया इसको मुझे मालूम ही नहीं, यह ऐसा भाव और जितना भी काल चलाएगा ऐसी उत्कंठा बनी रहे खजन में, इसको कहते हैं प्राण यहां तक आ गए मरने मरने गोपियां कृष्ण के मथुरा जाने मथुरा द्वारका जाने प्राण यहां तक आ गए अब मरने मरने को हो गए अब मर ही गई, कितना मरते भी जाए तो यदि वो कहा है कि आएंगे हम वो जरूर आएगा आएगा जरूर, और यदि हम मर जाएंगे तो उसको न दे करके वो भी बेचारा इसलिए मर आशा जरूर आए, इस साधक को भी जो भाव अवस्था में पहुंच गया ऐसे ही आशा बन गया और समुत्कंठा बनी गई है, आज कल मिलेंगे जरूर और उत्कंठा कब मिलेंगे कब मिलेंगे। उद्धव जी को भी भ्रम हो गया गोपियों का भाव देकर, कभी तो कहेंगे उनके बिना हम मरी मरी और फिर कहते हैं ये कृष्ण से कहें जल्दी आ जाने मक्खन समझ ही नहीं सकते, इनकी ये भ्रांति है या यथार्थ स्थिति है कुछ समझ नहीं सकते, साधारण प्रेम की ब्रज प्रेम को नहीं समझ सकते तो मादन मोदन की अवस्थाओं को उद्धव भी क्या समझे, इसलिए नाम गाने सदा रुचि नाम गान में सदा सब समय रुचि रुचि के नाम रुचि दूसरों को दिखलाने के लिए, जहां पर अधिक आदमी नहीं है वहां पर कीर्तन नहीं होता है। और जहां आदमी अधिक रहते हैं कीर्तन माने ये मत समझ लो जो कीर्तन करते हैं केवल ढोलकी और तबला अथवा मृदंग का सुखदेव को कीर्तन में रखा गया है, इस चीज को समझो। भैया सखी कीर्तन कीर्तन ही मैंने क्या, इसमें जितना चित्त आविष्ट हो जाता है और सौन में जितना चित्त आविष्ट होता है और दूसरे चित्तों में चित्त आविष्ट नहीं होता, इसलिए भैया सखी कीर्तन है अपरिचित समय स्मरण वाला गड़बड़ हो जाएगा, किंतु ये दोनों बड़े प्रकार उसमें चित्त लग जाए। इसलिए नाम गाने शतार्थी नाम गान नाम की महिमा ही नाम है। हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, भूखेले कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं, दूसरों के साथ से सम्मिलित होकर के कर रहे हैं, जहां पर कि विशेष विशेष अन्य अन्य भावों से युक्त विष्णु से युक्त जिनका चित्त है ऐसे ऐसे सब लोगों के साथ में कोई कर रहे हैं और वहां पर अनुगत न रहे तो वो कीर्तन संकीर्तन नहीं। एक बार गुरु जी कह रहे थे उनसे हम लोग परिक्रमा हो गई तो पूछ दिया कि ये परिक्रमा कौन कर रहा है, लोगों ने कहा जैसे सभी लोग कर रहे हैं परिक्रमा जितने यहां पर 10,000 आदमी है कि 15,000 ये परिक्रमा कर, नहीं ये लोग एक भी नहीं परिक्रमा कर रहे, कौन कर रहा है जो देवी परिक्रमा कर रहे हैं, जो उनके अनुगत्य में उनका पता स्मरण करके मन को भी अपने चित्त को उनमें लगा करके परिक्रमा करेगा उनका तो परिक्रमा हो जाएगा, और जो उनका अपने मन में उनका मन में मन मिलाया नहीं और परिक्रमा कराया उसको छंद गति से इधर उधर देखता है इधर